शास्त्रवृत्तिम् उत्सृज्य वर्तते कामकरात् न साम सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न पराम गतिम्। यम शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकरात् न साम सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न पराम गतिम्। वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। या शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकरात् न साम सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न पराम गतिम्। इसका अनुवाद हिंदी में है तो दोहराएंगे सब लोग साथ में। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो आप इसे समझ गए होंगे क्या कहने का उद्देश्य है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि के उत्सृज्य त्याग करके, उत्सृज्य शब्द का अर्थ है त्याग करके, श्रील प्रभुपाद ने बड़ी ज्ञान पूर्वक ढंग से इसको लिखा है, हर व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। कोई ये नहीं कह सकता मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं भी मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी संस्कृत कभी नहीं पढ़ा था, पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद की कृपा है। उत्सृज्य मतलब त्याग करके, शास्त्र की विधि को त्याग करके वर्तते, जो काम करता है काम करात, उसको ना ही सिद्धि, मतलब सिद्धि बोलते हैं सक्सेस इन एनी थिंग, बोलते हैं ना यार तूने तो इस कार्य में सिद्धि प्राप्त कर ली और सक्सेसफुल, सिद्धि बिजनेस की सिद्धि हो सकती है, ध्यान की सिद्धि हो सकती है, ज्ञान की सिद्धि हो सकती है, शास्त्र की सिद्धि हो सकती है, तंत्र मंत्र की सिद्धि हो सकती है, ये सभी प्रकार की सिद्धि सक्सेस नहीं मिलेगी उसको। दूसरा है न सुखम, हम हर काम करते हैं ताकि हमको सुख प्राप्त हो, हम पढ़ाई भी करते हैं ताकि हमको जीवन में सुख मिले, बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार, ऐसे करके बोला करते थे। तो पढ़ने लिखने के बाद व्यक्ति नवाब बनकर क्या करेगा, सुख कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, एवरीबॉडी वांट्स टू बी इन कंफर्ट जोन। तो यहां बोल रहे हैं लेकिन शास्त्र की विधि छोड़ करके जो रहेगा न सुखम, उसको सुख नहीं और ना ही पराम गति। आदमी सोचे चलो ठीक है जैसा करना था कर लिया, अब इस संसार को छोड़ने के बाद में अंत काल में लोग मेरे लिए राम नाम सत्य कह देंगे तो राम का नाम सुन लूंगा तो परम गति तो मिल ही जाएगी। हर व्यक्ति मरने के बाद परम गति पाता है क्योंकि हिंदुस्तान में सब राम नाम सत्य तो जानते हैं कहना, लेकिन यहां लिखा है जिसने काम किया उसको चाहे राम नाम सत्य बोलो या राम नाम झूठा बोलो, लेकिन उस व्यक्ति को अंत में परम गति प्राप्त होती नहीं। शास्त्र विधि वर्तते, शास्त्र विधि को उत्सृज्य छोड़ करके काम जो करता है। तो यहां पर लिखा गया है, आप देखेंगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है हिंदी में, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं फिर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले कहा जा चुका है मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। तो आप जिस भी आश्रम में हो, ये नहीं है कि साधु जी के लिए ही खाली सिद्धि की तरीका दिया गया है, कहा है किसी भी आश्रम में आप हो। कहा जा रहे हैं छोड़ दीजिए, कोई नहीं ठीक है, शास्त्र निकल गया उधर से वहां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। ना, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा आप लोगों को। हरे बोल हरे बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो हम जारी रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभ वश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य सारे सिद्धांतों को खाली जाने नहीं, इसको अपने जीवन में। तो आज हम जो चर्चा करेंगे सिद्धांतों की, दीपावली सिद्धांतों की, उनको आपको खाली सुनना नहीं है। फॉर अ गॉड सेक आपने सुना, बहुत अच्छा था प्रभु जी, थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, लेकिन घर जाके फिर वही बैक टू द पवेलियन, जो करते आए हैं 40 सालों से, 80 सालों से, 50 सालों से वही करेंगे, देन यू नो व्हाट इज रिटन हियर, यू विल नॉट गेट हैप्पीनेस। हम दिवाली चाहते हैं, लोगों को विशेष भेजेंगे। क्यों भेजते हैं विशेष? उसमें लिखते हैं, क्या बोलते हैं, विश भी भूल गया मैं तो आजकल, मटेरियल विशेष क्या होते हैं, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, आपकी दिवाली मंगलमय हो, आपकी दिवाली आपके लिए समृद्धि सुख लेकर के आए। परंतु भाई साहब ने अगर शास्त्र के विपरीत कार्य किया तो सुख कैसे आएगा? सुख खाली मोबाइल के मैसेज में नहीं है, ये आप भी जानते हैं, आप इतने बड़े हैं, आप अपने बच्चों को जानते हैं। अगर कोई बच्चा बोले मुझे टॉफी चाहिए और आप ड्राइंग पेपर पे बना दें टॉफी, बोले ये लो बेटा खा लो, तो क्या उसको वो रस मिलेगा? बताओ, आपको कैसी टॉफी चाहिए? ओरिजिनल टॉफी चाहिए। तो ओरिजिनल टॉफी प्राप्त होती है जब आप ओरिजिनल कोई काम करें। ऐसे एक व्यक्ति था, वो दुकानदार के पास गया और जाकर के कहता है, भाई साहब मुझे 1 किलो अंगूर दे दो, है ना। तो भाई साहब, दुकानदार ने उन्हें 1 किलो अंगूर दे दिए। उन्होंने कहा पैसे दो 100 रुपए किलो। तो उसने 100 रुपए ड्राइंग में बनाए और बोला 100 रुपीज फॉर यू। तो उसने देखा 100 रुपए, तो अंगूर बेचने वाले का बेटा भी देख रहा था मेरे पिताजी क्या करते हैं। तो उसके बेटे ने देखा पिताजी ने भी एक पेपर पे अंगूर बनाया और बोले ये लो। तो ऐसे ही है जीवन हमारा, अगर हम भगवान को छलना चाहेंगे, गीता को हाथ में रख करके, क्रिमिनल भी कसम खाता है जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उस क्रिमिनल की बात मान ली जाती है। आप सबके हाथ में गीता है, आप सबके पास में ज्ञान है, आप सब बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको इतनी सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए, शास्त्र में जो लिखा है अगर उसको छोड़कर कार्य किया तो ना सुखम न पराम गतिम, मे बी यू सेम्स टू बी हैप्पी बट यू विल नॉट बी हैप्पी फ्रॉम विद इन, अंदर से सब दुखी रहेंगे। सच्चाई है ये। आज इतने सारे लोग क्यों नहीं आते हैं पता है? शास्त्र सुनने के लिए डर लगता है। शास्त्र सुनेंगे हमारा एंजॉइंग मेंटेलिटी चली जाएगी। कल रात को यहाँ पर बंगड़ा पा रहे थे 11-12 बजे तक, तब सारे लोग थे। क्यों वहां पर जाने में डर नहीं लगता? बिकॉज इंजॉइंग मेंटेलिटी। हम इस जमीन पर आए इसीलिए क्योंकि हमने भगवान से द्वेष किया। वी वॉन्ट टू इंजॉय इंडिविजुअली। हम अकेला आनंद लेना चाहते थे, भगवान से कहा कृष्ण आप अकेले ही आनंद ले सकते हो गोपियों के साथ में, क्या मैं आनंद नहीं ले सकता हूं? मुझे शक्ति दो। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हें क्रिएट करता हूं। भगवान ने एक मटीरियल वर्ल्ड बनाया और हिंदुस्तान के कवियों ने, फिल्म स्टार्स ने गाना गाया, ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। लेकिन उसका आंसर उसको मालूम नहीं था, क्योंकि अगर आप इस आंसर को जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाले के मन में क्या समाई, उसने काहे को दुनिया बनाई, उसने काहे को दुनिया बनाई। तो इसका उत्तर शास्त्र में है। तो कवि ने खाली इतना पढ़ा, असमंजस में हो गया, क्या तेरे मन में समाई, लेकिन उसने ये नहीं पता चला क्यों बनाई। तो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता में लिखा है, इच्छा द्वेष समुत्थेना, हमारी डिजायर्स थी और हमारी एनवियसनेस थी भगवान के साथ। हमने कहा भगवान आप अकेले क्यों आनंद लेते हैं, हम क्या आपके नौकर बन के रहेंगे? हमको भी आनंद लेना है, वी वॉन्ट टू बिकम ओनर्स, मालिक बनना है। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक जगत बनाता हूं, उसके मालिक बन जाओ, फैक्ट्री मालिक बनो, मकान मालिक बनो, बच्चों के मालिक बनो, पत्नी के मालिक बनो, बनो मालिक बनो। तो हम यहाँ पर आते हैं, नकली मालिक होते हैं, फॉल्स। और फिर साईं बाबा आते फिर कहते तुम सब मालिक नहीं हो, सबका मालिक एक कौन है? कृष्ण। साईं बाबा के ग्रंथों में लिखा है माधव का भजन करते थे, दुर्गा का भजन करते थे और बोलते थे क्या माधव की डीटीज का भजन करते थे, लेकिन आज साईं को फॉलो करने वाले लोग ही नहीं जानते कि कृष्ण का भजन, वो बोलते सबका मालिक एक, नीचे वालों ने बोला तुम ही मालिक, ऊपर वाले को छोड़ो, नीचे शॉर्टकट में काम खत्म करो, पैसा दो, इसीलिए आज साईं मंदिर में बहुत दान आता है, शॉर्टकट, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट। तो यहां लिखा है यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करात, जो व्यक्ति आज शास्त्र को छोड़ के काम करेगा न राम सिद्धिम, ना ही सक्सेस मिलेगी, न सुखम, न हैप्पीनेस, न पराम गतिम। बाद में शरीर छोड़ने के बाद भी ऐसा नहीं मर गए तो मोक्ष हो गया, आत्मा पुनः वापिस आएगी, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में आना। तो एक बहुत ही सुंदर उत्सव है जिसे 7 दिवसीय और छोटा होते होते अभी 5 दिवसीय रह गया, 5 days, उन 5 में से भी 1 day और 2 day रह गया है ना। पहले अगर देखें शास्त्र में 7 दिन का उत्सव है, जिस दीपावली की शुरुआत आज के दिन से होती है, आप बता सकते हैं पहला दिन कौन सा होता है 7 दिनों में से? जरा चेक करें आपकी शास्त्र की नॉलेज, घरों में सुना होगा 7 दिवसीय उत्सव दीपावली, दीपावली का उत्सव 7 दिन का होता है, तो बताइए 7 दिन कौन से होते हैं? पहला दिन, हाँ जी, एकादशी, वेरी नाइस, आज का दिन है एकादशी, जिसका नाम है रमा एकादशी, रमा मतलब लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी की उत्पत्ति होने वाली है इसलिए आज की एकादशी को रमा एकादशी है। तो इसलिए आज हम आपको व्रत का प्रसाद खिलाएंगे, रमा एकादशी। So, रमा एकादशी में रमा मीन्स लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई, क्यों हुई उसका कारण हम सुनेंगे। एकादशी का दिन कहते हैं कोई व्यक्ति अगर जाने अनजाने में भी अन्न खाता है और अन्न के अंदर द पर्सोनिफाइड सिन, पर्सोनिफाइड सिन कौन होते हैं? सिन पर्सोनिफाइड होते हैं पाप पुरुष, वो एकादशी के दिन अन्न के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अन्न के अंदर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी अन्न खाता है, ग्रेन्स, वीट, राइस, he will get sinful life, पाप मिलेगा, पहले ही पाप कम है जीवन में, जिसके दुख हम भोग रहे हैं, कभी ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, रिटायर्ड हो जाओ तो पेंशन का टेंशन, लेकिन टेंशन रहता है बरकरार, हमेशा जाता नहीं है। और सबसे बड़ा डिसीज है इस टाइम, इंटरनेशनल डिसीज है एंजाइटी, हर व्यक्ति जिसको बोलो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करा लो तुरंत फोन करके बुला लेते हैं। इसका मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओज, अभी डे बिफोर यस्टरडे आई वाज इन एमएमटीसी, एमएमटीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड कॉल्ड मी फॉर अ क्लास, उन्होंने एक प्रवचन के लिए बुलाया, क्यों? स्ट्रेस में है सब लोग। अरे भैया तनख्वाह आपको मिल रही है, सरकारी नौकरी है, दिल्ली सरकार की गाड़ी है, फिर काहे की टेंशन, क्यों एंजाइटी? स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स ही क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है, ये बात सब जानते हैं लेकिन उसका तरीका क्या है नहीं जानते। बड़ी बड़ी कंपनियों में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट लीडरशिप मोटिवेशनल स्पीकर्स यूट्यूब बोल रहे हैं, अगर आप उनके असली जीवन को देखोगे दे आर फ्रॉड्स, मैं खुलेआम बोलता हूं, क्यों? क्योंकि आई एम बीइंग विद देम, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ रहा हूं जो शरीर बदल करके, रूप बदल करके रात को 10 बजे शूटिंग स्टार्ट होती थी, मैंने भी बहुत काम किया टीवी सीरियल, रात को 10 बजे शूटिंग शुरू होती है और वो जो माता जी, जो लेडी उसमें दिखाई जाएगी संस्कारी है, वो पहले 2 स्मोक लेगी अपने सिगरेट्स के, 1 ड्रिंक लेगी ग्लास, फिर साड़ी पहनकर आपको दिखाएगी सती है, पतिव्रता है, उसके चरित्र को देखकर के हम सोचते हैं वाओ व्हाट अ लाइफ, ऐसा ही लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो झूठा जीवन है। ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर है, एक बार हमने अपनी कंपनी में मोटिवेशनल के लिए बुलाए थे, उन्होंने बहुत सुंदर मोटिवेशन के ऊपर क्लास दिया, लेकिन क्लास देने के बाद में लीडरशिप डेवलपमेंट हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था कंपनी में, तो लीडरशिप डेवलपमेंट हुआ और उस डेवलपमेंट होने के बाद में लीडरशिप का क्लास दिया, स्ट्रेस का क्लास दिया, हाफ टाइम के बाद में 4 घंटे लेक्चर देने के बाद, पीपीटी प्रेजेंटेशन देने के बाद उनके मन में आया चलो थोड़ा रेस्ट लेते हैं, तो मुझे बोले बॉस कम टेक अ रेस्ट, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है क्या करना है, तो उन्होंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, पीने लगे, तो मैंने पूछा आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं, तो बोला दिस इज अ स्ट्रेस बस्टर, ये स्ट्रेस का रिलीज करने का तरीका है। मैंने कहा लेकिन सिगरेट वो व्यक्ति पीता है जो स्ट्रेस में होता है, पर आप तो अभी सेशन दे रहे थे हाउ टू ओवरकम स्ट्रेस, फिर आप खुद स्ट्रेस में कैसे? तो सच्चाई ये है, जीवन में एक बहुत बड़े राइटर थे जिनका नाम था डेनियल कार्ने, आपने उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी, और मैं
यही सारी बुक हाउ टू बिकम अ मैनेजर इन वन मिनट, हाउ टू थ्री इडियट, ये बुक पढ़ के मैं शायद गीता तक पहुंचा हूं। आई हैव बीन अ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट गाय, मैंने सब कुछ पढ़ा है। सो मैं कोई फेक साधु नहीं हूं कि पंडाल से उठकर आया, यज्ञ करता था और फिर आके सिखाने लगा। मैंने इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरा चखा है, अमेरिका से लेकर लंदन तक सब देखा है कि सच्चाई क्या है, मल्टीनेशनल में भी काम क्या, कितना प्रेशर रहता है, प्रोजेक्ट डिलीवरी रिपोर्ट्स देने के लिए कितनी टाइट लेग रहती है, सीईओ से लेकर वाइस प्रेसिडेंट का प्रेशर कितना रहता है, सब जानते हैं। सच्चाई ये है कि कोई व्यक्ति रियलाइज करता है हाउ टू रिलीज इट, समबडी डज नॉट। तो डेनियल कार्ने ने बुक्स लिखी, एक पुस्तक थी जिसका नाम था हाउ टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन, अपने फ्रस्ट्रेशन से कैसे बाहर निकले। और कुछ समय बाद आप गूगल में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ आया कि डेनियल कार्ने ने सुसाइड किया, हैंग्ड हिमसेल्फ टू द फैन, फैन से टांग दिया अपने आप को, और नीचे एक चिट्ठी छोड़ी थी लेटर, उस लेटर में लिखा था मैं मर रहा हूं क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर आपने पुस्तक कैसे लिखी, हाउ टू ओवरकम। इट मींस पीपल प्रीच बट दे डोंट प्रैक्टिस। What you preach, you have to practice. अगर मैं आपको बोलता हूँ आप नाम जप करिए, तो उससे पहले मैंने 15 साल नाम जप किया है। मैं आपको बोलता हूँ गीता पढ़िए, तो मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में रहकर गीता पढ़ा है, और आज भी मैं बड़े बड़े सीईओज के साथ बैठ करके पढ़ रहा हूँ, उनको पढ़ा रहा हूँ, डॉक्टर्स और मैनेजर्स के साथ बैठ रहा हूँ। तो ये कोई आपको पागल बनाने वाला सिस्टम नहीं है, जिसको देखो आता है, कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो, आप करके देख लीजिएगा, एंड में गीता में आएंगे, संतुष्टि तभी मिलेगी। मेरा अपना अनुभव है, आई हैव रेड बाइबल एंड कुरान ऑल्सो, क्योंकि अंतिम अंतिम स्तर का ज्ञान है। इसे कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसने आठवीं भी कर लिया, नौवीं भी कर लिया, बारहवीं भी कर लिया। ग्रेजुएट व्यक्ति से बोलो आपने आठवीं किया है, तो कहेगा क्या पूछ रहे हो। ऐसे गीता पढ़ने वाले से पूछो आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा है, उसने सब कुछ पढ़ा, उसके बाद ही कोई व्यक्ति गीता को समझ सकता है, पढ़ सकता है, इट्स टॉप मोस्ट नॉलेज। इसलिए भगवान को कृष्ण अर्जुन को कहते हैं परम गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, 9th चैप्टर में भगवान ने कहा परम गुह्यम द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नॉलेज, इदम उत्तमम इट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज, आई एम सेइंग यू बिकॉज आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सखा हैं, इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। इसलिए शास्त्र को पकड़ के चलेंगे ना, लाइफ बड़ी हैप्पी होती है। हमारे भी गृहस्थ है, हमारे भी बच्चे हैं, एंड सब कुछ मैनेज करते हुए गीता पढ़ के बहुत ही, जिसे कहते हैं ना मजानी लाइफ जीवानी, गुजराती में बोलते हैं, तो मजानी लाइफ तभी जी सकते हैं जब आप सच में शास्त्र को बेस लेके चल रहे हैं। शास्त्र का मतलब होता है भगवत गीता, भागवत, उपनिषद, पुराण, वेद, ये 40 आती हैं, इनको शास्त्र नहीं कहते हैं। इन्हीं शास्त्रों के अंदर से खाली एक श्लोक को निकाल करके 40 बना दी जाती है, 40 श्लोकों की या 40 दोहों की। 40 इज नॉट कंप्लीट नॉलेज ना। अब जैसे भगवान ने कहा कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, लेकिन उसके आगे भी कुछ कहा, उसके पीछे भी कुछ कहा, उससे हमें मतलब नहीं। कौन सा कर्म किए जा ये पहले श्लोक में बताया, अब व्यक्ति ने उसमें से कर्म किए जा निकाल लिया, बोले प्रभु जी वर्क इज वर्शिप, काम करना अच्छा लगता है हमें, ये पूजा पाठ नहीं। भगवान ने कौन सा कर्म कहा, कृष्ण भावना भवित कर्म करने के लिए कहा। भगवान ने कहा अगर सकर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, विकर्म करोगे तो पाप मिलेगा, और अकर्म करोगे, मेरे लिए कर्म करोगे तो न पुण्य मिलेगा न पाप मिलेगा, आपको ट्रांसेंडेंटल ब्लिस मिलेगा, आनंद मिलेगा। अभी ये चीज पढ़ा नहीं, कर्म किए जा फल की इच्छा गीता में, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, ये है गीता का ज्ञान। अरे आगे भी था भाई साहब, पीछे भी था, कुछ नहीं। तो इसको छोटा शास्त्र शॉर्टकट ढूंढ करके पढ़ लेना इज नॉट समथिंग। अब जैसे हनुमान चालीसा या सुंदरकांड, इट्स अ पार्ट ऑफ रामायण। अब लोगों ने सुंदरकांड पढ़ के हनुमान जी को भगवान बना दिया, लेकिन आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, उसमें क्या कहते हैं भगवान, कौन है हनुमान। हनुमान कहते हैं प्रात लेही जो नाम हमारा, ताए मिले ना बादिन आहारा, सुबह सुबह मेरा नाम लोगे उस दिन तुम्हें आहार भी नहीं मिलेगा। अब बताओ हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी को ही दुखी कर रहे हो, सुबह 5 उठ के अगरबत्ती जला दी, बोले हनुमान जी मदद करो, आज मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए, लेट सोकर उठाओ, हनुमान जी आज मेरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाए, हनुमान जी शक्ति दो, हनुमान जी कह रहे प्रात ले ही जो नाम हमारा, बार बार ले रहा है ना, ताए मिले ना बादिन आहारा, उस दिन तुझको ईटिंग है फूड भी नहीं मिलेगा खाने के। आदमी कहता है आज तो ऐसा हुआ यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, 2 रहे, वो गलती किसी और की नहीं है, वाइफ की नहीं है, बॉस की नहीं है, कैंटीन की नहीं है, काम की नहीं है, सुबह सुबह हनुमान जी का नाम ले लिया, क्योंकि हनुमान भगवान राम के भजन में लगे होते हैं। आप ही के शास्त्र से बोल रहा हूं, आप ही के सुंदरकांड में,
हमने नहीं लिखा है कुछ भी, सब तुलसीदास जी का, वेद व्यास जी का लिखा होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी स्क्रिप्चर्स इन अ वेरी डिटेल, डिटेल में समझना पड़ेगा। हनुमान जी कौन है? बाल ब्रह्मचारी, बाल भी नहीं है और ब्रह्मचारी भी है। और ऐसे ब्रह्मचारी को माताओं को स्पर्श करना मना होता है, पता है आपको? ब्रह्मचारी माताओं के पास नहीं जाते, ना माता ब्रह्मचारी के पास जाती है। लेकिन हम देखते हैं हमारे हनुमान मंदिरों में माताएं जाती हैं, हनुमान के स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं, स्पर्श करती हैं। चोला कैसे चढ़ाते हैं? सिंदूर लगाते हैं? आप नहीं कर रही है, तो लेकिन हमने जैसा देखा है, अच्छा है आप लोग फॉलो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, चोला क्यों चढ़ाते हैं हनुमान? क्यों चढ़ाते हैं? मन की इच्छा, ये तो है इसमें लिखा, मन की इच्छा से जो करेंगे उनको न सिद्धिम न सुखम न पराम गतिम। इच्छा से नहीं करना है जी, शास्त्र को समझिए, व्हाट आर द बेसिस, ज्ञान क्या है। सीता मैया सिंदूर लगा रही थी लाल रंग का, हनुमान ने पूछा सीता अभी सिंदूर क्यों लगाती हूँ? सीता मैया ने कहा मैं सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि राम मुझको प्यार करे। कहा अच्छा, अगर कोई सिंदूर लगाएगा लाल रंग का तो राम उसको प्यार करते? कहा हाँ। तो कहा मैं पूरे शरीर पे लगा लूंगा तो क्या राम मुझे प्यार करेंगे? ये भगवान को पाने की अभिलाषा। रे सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान, राम का भक्त हनुमान। अब भक्त को भगवान बना दो तो कैसा लगेगा? कल आप मुझे बोले आप गुरु भगवान जी हमारे, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैं बोल रहा हूँ भगवान कृष्ण है, गीता का ज्ञान है, आप मुझे ही भगवान बना दिए, सो आई विल गेट इरिटेटेड। तो इसी से हनुमान इरिटेट होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि हनुमान को कैसे पूजना है, राम भक्त हनुमान। किसी भी फोटोग्राफ में, ग्रुप फोटोग्राफ में हनुमान जी चरणों में बैठते हैं राम के, इसी से सीख लो। लेकिन नहीं, हम नहीं सीखेंगे, हम बोलेंगे सारे भगवान है, सारे भगवान। तो इन सब की चर्चा हम अगले अपने सत्र में करेंगे, आज दीपावली विशेष सत्र है। एकादशी के दूसरे दिन जो फेस्टिवल आता है उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ द्वादशी तो आता है, लेकिन क्या द्वादशी? द्वादशी तो हर बार एकादशी के बाद आती है, उसको बोलते हैं वासु बारस, वासु द्वादशी। वासु बारस का मतलब होता है दीपावली वाली जो बारस है इसमें गौ माता कामधेनु सुरभि गैया का उत्पत्ति हुई थी। कैसे हुई थी उसकी चर्चा करते हैं। एक बार इंद्र जो थे वो बड़े मदमत थे, ईगो में थे, क्योंकि वो हाथी पे बैठ के जा रहे थे, लीडर थे। तो लीडर होने के बाद में व्यक्ति के अंदर थोड़ा तो आता है, आई एम लीडर, मैं सर आई हैव अचीव्ड दिस। तो इंद्र ने स्वर्ग की गद्दी अचीव करी, अवंतीपुरी में रहने वाले 33 करोड़ देवताओं के हेड इंद्र हाथी ऐरावत पे चल रहे थे। तभी सामने से दुर्वासा ऋषि आया। दुर्वासा ऋषि ने कहा इंद्र मैं आपको भगवान की ये माला भेंट देना चाहता हूँ। आप कोई भगवान की माला जब देता है तो इसका बड़ा सम्मान करना चाहिए, ऐसे सूंघना चाहिए, सिर पे लगाना चाहिए और संभाल के रखना चाहिए, जमीन में ना गिरे, डस्टबिन में ना जाए, सिंक्स में ना जाए घर के, है ना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर इस माला का आपको अपराध लग जाएगा। क्या हुआ अपराध वो सुनिए। दुर्वासा ऋषि ने उतार करके इंद्र के गर्दन में डाला। इंद्र ने कहा बड़ा हैवी है, मैंने सोना चांदी मोती पहना है, ये फूलों की माला, अरे ऋषि मुनि भी कैसे हैं। उतारा, हाथी को पहना दिया, हाथी ने भी अपने सूंड से उतारा, नीचे डाल दिया और पांव रखकर चला गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा आपने भगवान के निर्माल्य माला का अपमान किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, श्रीहीन, सब कुछ निकल जाए, सब कुछ निकल जाए। अब तो तुरंत ही कहने की देर थी, सभी देवी देवता श्रीहीन हो गए, यहां तक इंद्र भी श्रीहीन हो गए, लक्ष्मी जी चली गई, बिल्कुल 0/0 लाइफ हो गई। होता है ना कई बार बैंकरप्ट हो गए, किंग फिशर, जेपी ग्रुप, हे क्या हुआ, कहीं ना कहीं मारा फेंक दी और श्रीहीन। उसके बाद में चाहे कुछ भी करो, नीरव मोदी जो कुछ भी करो, लेकिन उसके बाद में वॉट एवर यू डू, बट गवर्नमेंट नोज क्या है कैसे करना है वो उनका है, लेकिन भगवान का अपराध किया तो अपराध लगता है, चाहे आप जाने न। आदमी बोलता है प्रभु जी इतने ज्ञानी तो हम नहीं है। हाँ जी ज्ञानी नहीं हो, छोटा बच्चा अज्ञानी है और अज्ञानता में इलेक्ट्रिसिटी के स्विच में हाथ डालता है तो क्या होता है, करंट लगता है नहीं लगता है? ये तो नहीं कह सकते अरे 3 साल का छोटा था इसको क्यों बिजली लग गई, बिजली मैया तुमने इसको क्यों करंट दे दिया। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, अज्ञानता से आप बच नहीं सकते हैं। ये कह के हमने तो गीता पढ़ी नहीं, हमें नहीं लगेगा अपराध, लगेगा जी, सबको लगेगा, पढ़ लो, इसीलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ लो। अब कार के साथ में एक मैनुअल आता है, गाड़ी के साथ में, हाउ टू ड्राइव। आजकल ऑटोमेटिक कार्स का फैशन है, उसमें लोग कोई गियर डालते रहते हैं, टूट जाता है गियर बॉक्स उसका, फिर बोलते हैं कि क्या हुआ गियर बॉक्स खराब हो गया। तो मैनुअल दिया था, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल, उसको पढ़ लो, कार चलाओ बढ़िया चलेगी।
डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो कैसे चलेगी? चलेगी सर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल?
नहीं, नहीं।
और कुछ लोग ले जाके डीजल वाली गाड़ी खरीदते हैं, सीएनजी पंप पे खड़ी कर देते हैं और वो ढूंढता रहता है सिलेंडर किधर है। बोले सीएनजी वाली नहीं, यार हमसे धोखा कर लिया। अरे धोखा क्या किया भैया, देख कर आना चाहिए था पहले, सिलेंडर ही नहीं है गाड़ी के अंदर। तो इस तरह से हम अज्ञानता में ना रहें, ज्ञान में रहें। इसीलिए गीता का ये कोर्स शुरू किया गया है आप सबके लिए, और अधिक लोगों को बताएं इसके बारे में कि लोग जुड़े इसके साथ में और सुने ध्यान से। वसुबारस के दिन क्या हुआ, कैसे हुआ? जब श्रीहीन हो गए तो भाग करके इंद्र गए भगवान के पास। अब भक्त में और अभक्त में क्या फर्क है? एक जो डिवोटी है, जो भगवान का भक्त है, जो सद्गुणी है, सतोगुण में रहता है, वो जब परिस्थिति विपरीत होती है तब वो भगवान का चिंतन करता है। और जो असुर होता है वो कहता है, अरे चिंता की बात नहीं, मेरी बहुत जान पहचान है, मैं ऐसे सॉल्व करा दूंगा। एक सुप्रीम कोर्ट में फोन लगा, एक हाई कोर्ट में फोन लगा, एक पुलिस वाले को फोन लगा, अपने सारे फ्रेंड्स को फोन लगा, रिलेटिव्स को, लेकिन भगवान को स्मरण नहीं करता। ये असुरी गुण है। और सतोगुणी गुण क्या है कि हाँ वो ये सब काम तो करेगा परंतु साथ में भगवान का स्मरण करेगा। हे प्रभु आखिरी रक्षक तो आप हो। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्ण रक्षा करना चाहेंगे तो संसार में आपको कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर कृष्ण मारना चाहेंगे, जब वो राम बन के आते हैं तो शिव जी के भक्त रावण का वध कर देते हैं। मारे कृष्णा राखे के, फिर कोई रक्षा नहीं करता। शिवजी भी हाथ खींच लेते हैं। पार्वती ने कहा है, शिवजी देखो रावण मारा जा रहा है, आपकी इतनी भक्ति करी, रात दिन आप पर सोमवार का व्रत किया, जल चढ़ाया, आप रक्षा तो करो। शिवजी ने कहा, इसने बड़े बॉस के साथ में, बिग बॉस के साथ में परेशानी, पंगा लिया है, राम के साथ पंगा ले लिया, इसलिए क्या हुआ, अब इसको जो सबको बचाने वाला है, अगर उसी के प्रति अपराध किया तो वो तो मारेगा, छोड़ेगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा अब फिर क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना है, हम सबको बैठ करके जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबको जप करना। तो पार्वती जी और शिव जी दोनों चैंट करने लग गए हरे कृष्ण मंत्र। और ये रामायण और रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और पद्म पुराण, तीनों के अंदर शिव पार्वती संवाद के अंदर वर्णन है किस प्रकार शिव ने हरि का भजन किया। और वो ये कहते हैं, सुनो उमा ये अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपने के समान है, ड्रीम वर्ल्ड, लेकिन सच्चाई क्या है? हरि का भजन। ये पार्वती को शिव जी बता रहे हैं, शिव पार्वती संवाद रामचरितमानस। आपको समझना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम हरि भजन छोड़कर सब कुछ कर रहे हैं। हरि भजन को छोड़कर के करने से न सुखाम न सिद्धिम न पराम, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार से भगवान के पास जब गए, भगवान ने कहा समुद्र का मंथन करो, मिल्की वे गैलेक्सी, क्षीर सागर का मंथन करो। मंथन करने के लिए क्या चाहिए होता है? मंथन करने के लिए मथानी चाहिए, और क्या चाहिए? रस्सी चाहिए। तो रस्सी किसकी लाए और पत्थर कांते लाए? क्योंकि क्षीर सागर हमारे अटलांटिक समुद्र से भी बताते हैं 100 times बड़ा है, इतना बड़ा दूध का सागर। एक व्यक्ति को मैंने कहा इतना बड़ा दूध का सागर है, तो वो क्वेश्चन पूछता है, प्रभु जी इतना बड़ा दूध का सागर है, अगर दूध फट जाए तो क्या होगा? अपनी बुद्धि। तो मैंने उसको कहा कोई नहीं, आपको भेज देंगे, आप पनीर बना लेना। तो इतना बड़ा दूध का सागर है, भगवान की दिव्य शक्ति से वो वैसा का वैसे ही बना रहता है। क्षीर सागर, वहां पे शिरोदक्षाय विष्णु विराजमान है। उन्होंने कहा समुद्र मंथन करो, समुद्र का मंथन किया जाएगा। उसके लिए सुमेरु पर्वत से मंदराचल नाम एक पर्वत लेके आओ। मंदराचल पर्वत को उठाया तो इतना भारी उठाना किसी के बस की बात नहीं थी। तब भगवान ने गरुड़ के ऊपर बैठकर, भगवान का एक अवतार हुआ जिसका नाम है अजित, जो भगवान कभी भी किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हैं, हमेशा जो भी उनसे जीतने की कोशिश करेगा वो फेल हो जाएगा, इसीलिए भगवान का नाम है अजित, जो कभी भी किसी के द्वारा जीते नहीं जाते हैं। अजित भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने मंदराचल पर्वत लेकर गरुड़ के ऊपर उस मंदराचल को क्षीर सागर में रखा, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और मंथन प्रारंभ हुआ। जब मंथन चालू हुआ तो देवताओं ने कहा हम कौन से साइड ले, तो भगवान ने कहा तुम पहले बोलना, हम मुंह की साइड रहेंगे, और असुरों को देना, डेमीगॉड्स ने बोल, मतलब देवता लेंगे मुंह की साइड, वासुकी नाग के फनों की साइड, और राक्षसों को दे दो पूंछ की साइड। क्योंकि भगवान जानते थे राक्षसों को जैसे ही पता चलेगा इन्होंने अपनी प्रायोरिटी ले ली है, राक्षस तुरंत कहेंगे नहीं नहीं हमें दो, तुमने वो क्यों लिया है। तो भगवान ने पहले ही जान करके ऐसा किया। फिर राक्षस जो थे उनको पता चला ये मुंह की साइड है, तो बोले हम फ्रंट लाइन में रहना चाहते हैं, है ना। तो कई बार कुछ लोग होते हैं जो पीछे से सेवा करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो फ्रंट लाइन में रहना चाहते हैं। तो मेरे जैसे असुर होते हैं और प्रभु जी माता जी जैसे लोग हैं, ये सब जो है ना सुर देवता लोग से आए हैं।
तो इस तरह के लोग फ्रंट लाइन में जो रहना चाहेगा हमेशा, मैं आगे रहूं, वो व्यक्ति असुर प्रवृत्ति का है। तो असुरों ने मुंह की साइड छीन ली और देवताओं का चलो पूंछ की साइड। वासुकी नाग का मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन होते ही उसमें से सबसे पहले क्या चीज निकली, क्या निकला जानते हैं आप लोग? दूध का मंथन करेंगे तो क्या निकलना चाहिए? मक्खन। और अमृत निकलने के लिए इस मंथन को किया गया, परंतु सबसे प्रारंभिक अवस्था में ही उसमें से विष निकला। क्या निकला? विष। अब विष निकला तो सारे देवी देवता राक्षस सब साइड हो गए, बोले इसे कौन पिएगा? पूरे क्षीर सागर पर, जो अटलांटिक महासागर के 100 times बड़ा है, इस समुद्र में छोर से छोर सिखाई नहीं देता है ना। अगर इस शोर पे खड़े हो, हिंदी में शोर, अंग्रेजी में शोर, इस शोर पे खड़े हो तो दूसरा शोर नजर नहीं आएगा। अटलांटिक समुद्र इसका 100 times बड़ा दूध का सागर है, कैसे नजर आएगा? उसमें बताते हैं देवी देवता राक्षस घुटनों के बल खड़े थे, मतलब कितने बड़े बड़े थे सोचिए, और वो खड़े होकर मंथन कर रहे थे। और मंथन करते ही जब जहर निकला, इतना सारा जहर, बोले अब किसको दें? हलाहल। तो शिव जी को बुलाया गया, बोले शिव जी आप महान वैष्णव हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, आप भगवान की सेवा करिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी की तरफ देखा, बोले आने वाले समय में भी सब एक दूसरे को विष दिया करेंगे, अभी देंगे ना दिवाली विष, है ना, सब लोग विष देंगे एक दूसरे को, और बोलेंगे भी फोन करके, हेलो हाँ जी कैसे फोन किया, आपको विष देना था। हलाहल। सच्चाई देखी जाए तो हम कितना अंदर से क्रिटिक्स होते हैं, लोगों को क्रिप करते हैं, लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, इवन अपने रिलेटिव्स के बारे में इतनी उल्टी 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 बातें करते हैं, ये ऐसा वो ऐसा ये ऐसा, लेकिन दिवाली के दिन सब प्लास्टिक स्माइल लगा के घूमते हैं, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, विश यू वेरी हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। सच्चाई क्या है अंदर से, क्या आप उसकी चाह रहे हैं दिवाली? अगर उसको पता चल जाए उसने ब्रीजा खरीदी है और आप नहीं खरीद पाए, तो आपकी वो, अरे मेरी इसको लग गई, खुद को नहीं लगी यार, मेरी खुद को नहीं लगी, इसको कैसे लग गई है? सो ऐसी दिवाली का विश देना नहीं चाहिए। सच्चाई ये है कि शास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति को बोलना चाहिए हरे कृष्णा, आपकी दिवाली मंगलमय हो, ऐसे इतना। विश जो है ये शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ, हिंदी से आया संस्कृत शब्द। तो जब जहर निकला तो शिव जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, कहा पी लूं? तो पत्नी को तो पूछता है, अभी यहाँ पर किसी को बोलूं गीता खरीद लो? कहेगा एक मिनट आता हूँ जरा पूछ करके। वो घर जाएगा, बोले आप बोल रहे हैं गीता खरीद लूं, कितने की है? 100 की। देख लो बर्बाद कर दोगे, ये लाना था, लाइट लानी थी। अच्छा चलो ठीक है, रहने दो बाद में देखूंगा। तो पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने कहा अरे भगवान की सेवा है, आप मना कैसे कर सकते हैं, आपको पीना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, जान भी जाए तो जाने दो। तो शिव जी ने कहा ठीक है मैं पीता हूं, लेकिन भगवान ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो शिव, तुम तैयार हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, परमात्मा रूप में तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, हाथ लगा के गले में ही रोक दूंगा, नीचे एक बूंद नहीं गिरने दूंगा। शिव जी ने जैसे ही हलाहल पिया उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ महादेव कहलाए, है ना। भगवान चाहते हैं मेरे भक्त का यश फैले, है ना। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो क्या भगवान अपना नाम का प्रचार अमेरिका में नहीं कर सकते थे? किसी भी पादरी को स्वप्न में भक्त बना देते? भगवान तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान चाहते हैं मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मैं क्या करूं उसको पॉपुलर करूं। इस तरह शिवजी की पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो परम भक्त हैं, भागवत में श्लोक आता है निम्न गणाम यथाम गंगा देवा नाम अच्युतो तथा वैष्णव नाम यथाम शंभु पुराणा नाम इदम तथा। जिस प्रकार से बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से देवताओं में अच्युत हरि कृष्ण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से वैष्णवों में भक्तों में शिवजी सबसे बड़े, वैष्णव नाम यथाम शंभु सबसे बड़े भक्त हैं भगवान के। और अंत में कहा शास्त्रों में सबसे उत्तम शास्त्र है श्रीमद भागवत पुराण, पुराण कहा गया, इसीलिए भागवत सप्ताह होता है, 7 दिन कथा सुनते हैं, क्योंकि उससे ऊपर कोई शास्त्र नहीं। परंतु प्रॉब्लम क्या है, भागवत शास्त्र सुनने के बाद भी कोई व्यक्ति आपको शास्त्रों का निचोड़ नहीं सुनाएगा, कथा करेगा, कहानी सुनाएगा, घर चला जाएगा। शिक्षा क्या है, शास्त्र कहना क्या चाहते हैं, आज कलयुग में इन शास्त्रों को अप्लाई कैसे करना है। दिस टीचिंग्स आर गिवन बाय इस्कॉन, इस्कॉन ये टीचिंग्स वर्ल्ड वाइड लोगों को दे रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स में भी दे रहा है, IIT कॉलेजेस में भी दे रहा है, कॉर्पोरेट्स में भी दे रहा है, घरों में, स्कूल्स में, सब जगह दे रहा है, ताकि लोग इन शास्त्रों को खाली पढ़कर ये नहीं बोले ये तो रिटायरमेंट के बाद की चीज है, बच्चों की थोड़ी है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। नहीं, जब आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, परेशान हैं, तभी ये गीता आपकी सच्ची मदद करेगी। आप देखिए फैमिली में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, घूमने जाओ कहीं पर और फोटो खींच कर आओ और बाद में फेसबुक पे अपलोड करो और कोई लाइक ना करे तो बड़ा दुख होता है। लेकिन जब हम समझ जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, तो ये सारे दुख हमारे रहते नहीं है। किसका फोटो खींचा? शरीर का। आत्मा का तो फोटो खींचा नहीं। तो अगर किसी ने लाइक किया तो शरीर को क्या, डिसलाइक किया तो शरीर को क्या, मुझको तो किया नहीं क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मुझे कोई जानता ही नहीं। किसी ने कहा वो मोटे, किसको कहा? शरीर को कहा। तो बहुत सारे दुख जीवन के चले जाते हैं। उतार चढ़ाव किसका आया? शरीर का आया। आत्मा तो कभी भी मरती है, ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। इसलिए सभी दुखों को दूर करने की शक्ति है इस भगवद गीता में। अर्जुन भी बड़े परेशान थे, टिपिकल सिचुएशन थी, घर वालों को मारू कैसे। ऐसे समय भगवान ने गीता सुनाई। ये नहीं कहा संडे का दिन 10 बजे है ना सम्राट अशोक में प्रसाद वसाद लगा के चेयर वेयर लगा के बैठेंगे, अर्जुन अभी तो लड़ाई कर लो, बाद में बैठेंगे गीता सुनाऊंगा, ऐसे नहीं कहा। भगवान ने कहा मोस्ट टफेस्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ जब है, जब तुम ग्रस्त आश्रम में हो, बच्चा अभी 18 वर्ष का है, मतलब बोर्ड का एग्जाम दे रहा था अभिमन्यु, 18 वर्ष का बच्चा है, और साथ में आप ग्रस्त परिवार में हो, और साथ में आपके सामने आपके परिवार के लोग खड़े हैं। ऐसे समय में अगर मैं आपको गीता सुनाऊं, मान लो यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए और दो लोग लड़ रहे हो, मैं पहुंच जाऊं, प्रभु जी सुनिए जरा गीता, ऐसा कहा गया है, आप हाँ प्रभु जी हटो अभी ये सेटल डाउन करने दो, पुलिस बुलाई है, 100 नंबर पे कॉल किया, ये हुआ है वो हुआ है, तो प्रभु जी गीता सुने, हटे संडे को सुने गीता, ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा सबसे मुश्किल परिस्थिति में ही गीता आपकी मदद करती है। रोड पर हम भी चलते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाने पर, स्क्रैचेस लग जाने पर आपके अंदर मन में भाव आता है कि है ना ये कार मेरी है, और मेरी का मतलब अहम संस्कृत में, और कार आप बोलते मेरी कार, अहंकार, अहंकार को बोलते ईगो। अहंकार में जब टक्कर होती है तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, थॉट का गेम है। कोई आपको फोन करके बोले प्रभु जी कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको होते ही रहता है, सर आपकी कार का हो गया है, अटैचमेंट इज विद व्हाट, मेरी प्रॉब्लम। कार का एक्सीडेंट अगर प्रॉब्लम थी तो फिर आपको उसी टाइम भागना चाहिए, आग लग गई जी, अजी आजकल तो क्या है लोग बड़े केयरलेस हो गए जी, आप ही के घर में लग गए हैं। तो ये हमारा अपना अहम ममेती, मेरा और मैं की जो भावना है, उसी से संसार में हम फंसे हुए हैं, और इसको काटने की शक्ति सिर्फ एकमात्र भगवद गीता के अंदर और किसी में नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने जब मंथन किया, विष निकला, विष शिवजी ने पिया, बाद में उसमें से अन्य वस्तुएं निकली, हाथी, हथनी, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और साथ में अंत में उसमें से अमृत भी निकला। तो आप बता सकते हैं टोटल कितने आइटम निकले थे इस समुद्र मंथन में से? हाँ 14। ओके आप बताइए, और कोई तो क्या मारना है, मार लो, क्या होगा, कोई पैसा थोड़ी कट, हमारी लाइफ लाइन है 100% फ्री है, चल सकता है। बताइए बताइए, केबीसी मतलब जानते क्या है? कृष्ण भावनामृत सेंटर है ना, कृष्ण भावनामृत सेंटर है केबीसी। तो कृष्ण भावनामृत सेंटर में आप लोगों को जवाब देना है कितने रत्न निकले थे। दिवाली का उत्सव है, अभी आप सब बड़े हैं, आप बच्चों को सिखाएंगे, पहले खुद पता होना चाहिए, वरना बच्चे बोलेंगे पापा आपको भी याद, मम्मा आपको भी याद, तो इसलिए आपको बताना चाहिए। कितनी, हाँ गामधेनु गाय निकली थी, वेरी नाइस, हथनी निकली, हाथी निकले, कमल निकला, लक्ष्मी निकली, कौस्तुभ मणि निकला, उक्ष्रवा घोड़ा निकला, तो टोटल कितने आइटम, अमृत निकला, विष निकला। तो माता जी ने कहा 14, और कोई है बोलो, बोलना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, 14 सर पता नहीं, ठीक माता जी। तो वहां पर निकले थे 13 आइटम निकले थे, 13, एक कम था बस, बिल्कुल सही माता जी पहुंच गए थे, लगभग बराबर था, 13 आइटम निकले थे, इसीलिए हमने अपना मंदिर सेक्टर 13 में बनाया ना, ये इस्कॉन का मंदिर 13 सेक्टर में निकले, इसलिए 13 आइटम निकले। अंतिम समय में क्या निकला, अमृत निकला। अमृत का मतलब है जिसको पीने के बाद कोई व्यक्ति मृत नहीं होता है, अमर हो जाता है। देवी देवता भी भागे और राक्षस भी भागे, बोले हम पियेंगे हम पियेंगे हम पियेंगे। उस कुंभ अमृत कुंभ के 4 बूंदे 4 स्थानों में गिर गई। कहाँ कहाँ गिरी? इलाहाबाद में गिरी, नासिक में गिरी, उज्जैन में गिरी, हरिद्वार में गिरी। तो इस प्रकार से 4 स्थानों में वो बूंद गिरी, जिसके कारण वो क्या बन गया, कुंभ मेला बन गया, जहां पर आज 2019 में फिर कुंभ मेला होने वाला। तो इस प्रकार से कुंभ में से जो अमृत गिरा, उस वेला को अमृत वेला स्नान कहते हैं, और कभी कभी वो होती है अमृत वेला, 12 साल बाद ये अमृत वेला आती है, तब उसको महाकुंभ कहते हैं, और महाकुंभ के अंदर स्नान करना बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस कुंभ के दिन जब ये अमृत लेकर के जो व्यक्ति निकले, उनका नाम है क्या, धन्वंतरी, धन्वंतरी भगवान। जितने भी आयुर्वेदाचार्य हैं हमारे इंडिया में, उनकी क्लिनिक्स पे धन्वंतरी का फोटो रहता है। आयुर्वेद का मतलब है वेद मतलब ज्ञान, आयु मतलब एज. द नॉलेज विच इंक्रीजेस योर एज इज नोन एज आयुर्वेदा. आयुर्वेदा वहां से आयुर्वेदा हो गया संस्कृत शब्द. तो आयु को बढ़ाने वाले ज्ञान को आयुर्वेद कहते हैं. इसके उत्पादक करने वाले कौन थे? धन्वंतरी जी. इसीलिए उस दिवस को बोला जाता है धनतेरस का दिवस. धनतेरस होती है तेरस. तो अभी हमने पढ़ा एकादशी, फिर हमने पढ़ा वस्तु बारस जिसमें गौ माता निकलती है उनकी पूजा होती है, और फिर उसके बाद आता है धनतेरस. तो धनतेरस का धन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम लोगों की बुद्धि ऐसी है कि हम जहां भी धन देखते हैं वहीं अटक जाते, उसके आगे देखिए तेरस चौदस कुछ भी हो मैं धन से मतलब है ना. अगर मैं किसी को बोलूं ये चिंतामणि है भगवत गीता, तो आदमी तुरंत उसमें से चिंता हटा देता है और मनी निकाल लेता है, कहता है हाँ इसमें मनी है. चिंता अबाउट मनी इस चिंतामणि है ना, वो वाला चिंतामणि नहीं. चिंतामणि का मतलब जिसका भी चिंतन करें वो प्राप्त हो जाए, वो चिंतामणि है श्रीमद् भगवत गीता. तो इस चिंतामणि शास्त्र को चाक करके लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं. धनतेरस के दिन क्या क्या करते हैं? बर्तन खरीदते हैं. अभी कोई पूछे उस कटोरी खरीदने वाले से, चम्मच खरीदने वाले से, भाई साहब मैं आपके पांव छू करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, मुझे बताइए ये कहां लिखा है कि चम्मच कटोरी खरीदना, कहां लिखा, कहां लिखा? अगर ये बोला जाए तनिष्क ज्वेलर्स का 80% डिस्काउंट, एक गोल्ड क्वाइन भी मिलेगा, डिबियर्स डायमंड में भी मिलेगा, तो माताएं तो मुझे मारेंगी, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी कि धनतेरस का इस धन से कोई संबंध नहीं. धनवंतरी के नाम से, धनवंतरी की उस दिन प्रकट दिवस है, भगवान के अवतार है, अमृत लेके आए, तो उस दिन बैठ करके नाम जप करना चाहिए. धनतेरस के दिन भगवान का नाम जप करें. धनवंतरी भगवान का फोटोग्राफ गूगल से प्रिंट आउट निकालें, सबके घर में प्रिंटर है, अपने ऑल्टर में, अपने घर के देवालय में लगाएं और बोले हे धनवंतरी आप भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, आप अमृत लेके प्रकट हुए, मेरे सारे रोगों को दूर करो ताकि मैं आपका नाम कीर्तन कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं. ये भाव से अगर हम धनवंतरी की पूजा करें, सकल रोग विनाशाय, ऐसा शास्त्र में आता है, सारे रोगों की विनाश करने की शक्ति है, क्योंकि धनवंतरी उत्पादक है आयुर्वेद के. तो आप देखो हम उन लॉजिक से, उन शास्त्र विधि उत्सृज्य छोड़ करके कहां लगे हैं. कोई सोना खरीद रहा है, कोई टेबल फर्नीचर खरीद रहा है, उस पर सतिया बना देते हैं, बोले पूजा हो गई धनतेरस की. ये हमने रिचुअल्स बना दिए स्पिरिचुअलिटी को छोड़ करके, खाली रिचुअल्स. और अब तो कुछ लोग रिचुअल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडवांस इसको बोलते हैं. आने वाली जनरेशन उनको तो पता ही नहीं धनतेरस क्या है. ऑफिस में बोलो धनतेरस मींस नो अ डे बिफोर छोटी दिवाली, बस फन डे पार्टी डे, वो भूल गए हैं क्या है. तो ये शास्त्र जानना. बोलते यम शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करात न साम सिद्धिम आप्लोति न सुखम न पराम गति, न सुख मिलेगा न सिद्धि न पराम. तो इस प्रकार से धनतेरस का दिवस मनाएं. कैसे बनाएंगे? धनवंतरी की पूजा करेंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे. जप माला आप सबके पास है, आपने ली है, भगवान के नाम का जप करिएगा एक माला का और बोलिएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इसका 108 टाइम्स करिएगा, तुलसी का पान करिएगा, गंगा जल में डाल करके आपकी धनवंतरी धनतेरस बन जाएगी. उसमें कोई खर्चे की जरूरत नहीं है. हाँ वो करते हैं, परचेजिंग करने का एक बहाना चाहिए, क्रेडिट होके फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इसका भगवान से कोई रिलेशन नहीं है. उसके बाद में आता है धनतेरस के बाद में नरक चतुर्दशी. नरक चतुर्दशी जिसे लोग आजकल छोटी दिवाली के नाम से जानते हैं, उस दिन कुछ लोग पटाखे फोड़ते हैं, घरों की सफाइयां करते हैं, लाइटिंग्स लगाते हैं, कंडील्स लगाते हैं, शैंडलियर्स लगाते हैं, सोफा सेट बदलते हैं, कुर्सी खरीद रहे, ये खरीद रहे, वो खरीद रहे, खरीददारी 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 में ही समय चला है. नरक चतुर्दशी के दिन कुछ लोग सुबह सुबह जल्दी अपने बच्चों को उठाकर स्नान करते हैं जो जानते हैं, और कुछ लोग अपने घर के बाहर एक बड़ा दीपक लगाते हैं यमराज के लिए, कि बोलते हैं यम हमारे घर की ओर देखे नहीं, इसलिए मैं क्या करता हूं, ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य है ना, ज्योतिर्मय सदगमयम है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमयम, बोलते हैं ना हे मां ज्योति प्रदान करो. तो उस दिन का दिन लोग बनाते हैं ताकि यमराज का दर्श ना हो, इसीलिए उसका नाम है नरक चतुर्दशी, ताकि हमें नरक ना देखना पड़े. लेकिन ऐसा नहीं, इसकी शास्त्र कहते हैं नरक का नाम कहां से पड़ा. वराह देव भगवान जो कि एक पिग फॉर्म लेकर आए थे, वाइल्ड बोर, उस वराह भगवान ने जब पृथ्वी को धारण किया तो वराह और पृथ्वी के संग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था नरकासुर.
नरकासुर देखते ही देखने में लग रहा था असुर है, और उसका एसोसिएशन ऐसा था, उसकी हरकतें ऐसी थी। भगवान से पृथ्वी माता ने कहा, हे प्रभु आप बस शक्ति दे दो इस बच्चे को कि आप इसको कभी नहीं मारोगे, बस उसके बाद कोई इसको नहीं मार पाएगा, ये शक्तिशाली है क्योंकि आप ही से प्रकट हुआ है। तो वराह भगवान का पुत्र होकर भी राक्षस बन गया, और हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद होकर भक्त बन गया। तो इसका मतलब माता पिता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको संस्कार कैसे दिए जा रहे हैं। ये नहीं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो स्टैम्प्ड ब्राह्मण ही रहेगा, हम पंजाबी के घर में रहा तो पंजाबी स्टैम्प्ड पंजाबी रहेगा, और मद्रासी के घर में रहा तो स्टैम्प्ड मद्रासी, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट स्टैम्पिंग। और इस पर एक पिक्चर भी आ गई, केपी वो आया था ना, कौन पीके, वो पीके बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है कि स्टैम्प नहीं होता है। सच बात है, स्टैम्प नहीं होता है, कॉन्शियसनेस का खेल है सारा। भगवान ने गीता में कहा जैसी क्वालिटीज होंगी, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः, जैसे गुण होंगे जैसे कर्म होंगे वैसे आपकी जाति हो जाएगी। अगर एक शूद्र में पैदा होने वाला व्यक्ति सुबह सुबह उठता है, नहाता है, भगवान का दीप दान करता है, कीर्तन करता है, ये सब ब्राह्मण। और एक व्यक्ति स्टैम्प्ड ब्राह्मणा है लेकिन वो 12 बजे सूरज उदय होने के बाद उठ रहा है, उठते ही बिना ब्रश के खाना खा रहा है, बोला ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रश से पहले होना चाहिए, फास्ट ब्रेक कर रहा हूं मैं अपना, तो इस प्रकार की जो विधि पालन कर रहा है क्या वो ब्राह्मण रहा? ब्राह्मण। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने गुणों के आधार पे और कर्मों के आधार पे विभाग किया है, जाति के आधार पे भगवान ने किया। लेकिन अभी वो क्या जाति प्रथा बन गई, जाति प्रथा जाति। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा हमारी परंपरा कुल परंपरा नहीं है, गुरु जी का बेटा गुरु जी होगा नहीं। जब भगवान का बेटा वराह का बेटा नरकासुर हो सकता है, और हिरणाक्ष का बेटा प्रहलाद हो सकता है, उग्रसेन का बेटा कंस हो सकता है, तो फिर आप यहां पर जाति से नहीं नाप सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको MBBS पढ़ने जाना पड़ेगा। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं होता, उसको MTech पढ़ने, ऐसे ही ब्राह्मण के शास्त्र पढ़ने उसको गुरुकुल ज्ञान लेने जाना पड़ेगा, बोल नहीं सकते ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ये स्टैम्पिंग इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से नरकासुर जो था उसने भगवान से कृपा पाई कि मैं, भगवान ने कहा इसका वध नहीं करूंगा। अब बड़ा खुश हुआ नरकासुर, उसने कहा भगवान तो मारेंगे नहीं, फ्रीडम। अब उसकी ईगो बढ़ने लगी, अहंकार बढ़ने लगा, उसने क्या किया, अलग अलग लोगों से एक एक राजकुमारी को चुराया और लाकर के अपनी कैद में रख लिया। बताते हैं आसाम के पास उसका एक स्थान है जिसे प्रज्ञा ज्योतिषपुर कहते हैं, और उस स्थान में नरकासुर ने 16,100 राजकुमारियों को कैद किया। सोचिए आप 16,100। अब सारी राजकुमारियों ने चिट्ठी लिखी कि हे प्रभु हे कृष्ण हमारी रक्षा करिए। अब भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे सत्यभामा क्योंकि तुम पृथ्वी का अवतार हो, ये उनको बताया नहीं लेकिन भगवान जानते हैं कि तुम पृथ्वी का अवतार हो, तो इस तरह से एक चिट्ठी आई है, 16,100 राजकुमारियां पुकार रहे हैं क्या मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। कहा हाँ प्रभु बिल्कुल, जिस असुर ने ऐसा किया है उसको मार देना चाहिए। भगवान बोले मैं तो मारूंगा नहीं, मैंने वचन दिया है कि मैं मार नहीं सकता हूँ पृथ्वी माता को। अब सत्यभामा को मालूम नहीं है कि वो पृथ्वी के अवतार है। सत्यभामा ने कहा चिंता मत करो मैं मार दूंगी, आप लेके चलो। अब सत्यभामा और कृष्ण दोनों पहुंचते हैं प्रज्ञा ज्योतिषपुर में। उसने ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म लगाया था, आप भी नहीं सोच सकते, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। पहले कॉन्क्रीट की एक दीवार बनाई थी, उसके बाद में एक पानी और आग की दीवार बनाई थी कि पानी निकलेगा फुव्वारे निकलेंगे आग निकलेगा। फिर उसने बार्ब्ड वायर्स करंट वाले जो अभी LOC में यूज होते हैं तार लगाए थे कि हाथ लगाओ तो करंट लगेगा। इस प्रकार से उसने 5 दीवारों का अपना किला बनाया था प्रज्ञा ज्योतिषपुर के नाम से, ज्योतिषियों से पूछ पूछ के कैसे ज्ञान की बना लिया। अब बड़ा किला बना लिया, भगवान आए, और भगवान जैसे ही गरुण के ऊपर सत्यभामा और द्वारकाधीश पहुंचे तुरंत भगवान ने अपनी कुमोदगी नामक गदा से, भगवान की गदा का नाम है कुमोदगी, गदा से भगवान ने क्या किया उस ईंटों की दीवार को तहस तहस कर दिया। फिर भगवान ने अपने चक्र से, चक्र का क्या नाम है, सुदर्शन बिल्कुल सही माता जी, सुदर्शन चक्र से उन्होंने दूसरी दीवार को काटा। फिर उन्होंने तलवार से तीसरी दीवार को काटा, तलवार का क्या नाम क्या है, तलवार का नाम भगवान की, सुदर्शन चक्र तो आप जानते हैं, गदा मैंने बता दिया कुमोदगी, तलवार का क्या नाम है, भगवान की तलवार का नाम है नंदक तलवार। तो नंदक तलवार से भगवान ने अपना तीसरी दीवार को काटा, और चौथी दीवार को भगवान ने अपने धनुष से काटा। भगवान के धनुष का क्या नाम है, धनुष, भगवान के पास एक धनुष बाण होता है बो एंड एरो, क्या नाम है उसका, नाम है सारंग धनुष, है ना, सारंग नामक उस धनुष से भगवान ने चौथी दीवार को काटा, और पांचवी दीवार को भगवान ने अपने शंख की ध्वनि से काटा। तो शंख का क्या नाम है भगवान के, हाँ बिल्कुल, कौन बोल रहे, सही बोल रहे हैं,
पांच जने, बिल्कुल माता जी, पांच जने नामक शंख बजाया, उसका जोर से ध्वनि करी, उसकी वाइब्रेशन से उसकी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई। इसीलिए घर में शंख बजाया जाता है, शंख बजाने से सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा रहता है। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको अवश्य शंख बजाना चाहिए, और घर के अंदर शंख बजाने से पॉजिटिविटी रहती है। तो फेंग शुई तो चाइनीज आइटम है, टिंग 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 टिंग, वो बेचारा कितनी नेगेटिविटी हटाएगा, उसकी आवाज ही ऐसी है टिंग 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 टिंग, वो सोच भी नहीं सकता जितनी एक शो शंग बजाने नेगेटिविटी है। तो ये हमारे हिंदू शास्त्र से ही चाइनीज लेकर के गए, और कहीं से नहीं लेके गए, सारा शास्त्र यहाँ तक, जर्मनी की आर्मी इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, अमेरिकन आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, वेदास से सब कुछ निकला। तो इस प्रकार से उन्होंने शंख बजाया और पांचवा तोड़ दिया। नरकासुर राक्षस का वध सत्यभामा ने किया। 16,100 राजकुमारियों ने कहा हम कहां जाएंगे, भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें संरक्षण प्रदान करूंगा, तुम्हारी जैसी जैसी पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा है मैं वैसा पुरुष बन जाऊंगा। भगवान ने अपना 16,100 रूपों में विस्तार किया, जिसको जैसे पति की अभिलाषा थी वैसा पति दिया। ये भगवान कृष्ण की शक्ति थी, और उन्होंने सभी के लिए एक एक महल बनाया द्वारका में। ये नरकासुर का भगवान ने वध किया। ये नरक चतुर्दशी के दिन कथा सुननी चाहिए, स्मरण करनी चाहिए, बार बार कहना चाहिए हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने नरकासुर नामक नेगेटिविटी को समाप्त किया, हमारे भी नेगेटिविटीज को समाप्त करिए, और हमें अपनी शरण में, जैसे आपने राजकुमारियों को अपनी शरण में लिया, हमें भी अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार से नरक चतुर्दशी दिवस मनाया जाता है। और अब आता है दीपावली का उत्सव। दिवाली का दिन जब लक्ष्मी जी बाहर निकली, तो लक्ष्मी जी का कई कमल के साथ में निकली थी, उनको कई धातुओं से और कई औषधियों से उनका अभिषेक किया गया। अभिषेक करने के बाद उन्हें रत्न सिंहासन पर बिठाया गया और बोला गया आप किसी भी देवता को वरमाला पहना सकती हो जिसको आप ठीक समझो। तो लक्ष्मी जी ने शिव जी को देखा, ब्रह्मा को देखा, इंद्र को देखा, वरुण को देखा, चंद्र को देखा, सूर्य को देखा, सभी को रिजेक्ट कर दिया, और बाद में किसको वरमाला पहनाई, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, और कहा मैं इनको अपना वर मानती हूं। क्यों? क्योंकि सभी दुनिया इस ब्रह्मांड नायक कृष्ण की शरण में रहती है। तो अगर मेरे ये हस्बैंड बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, पालन करने वाले बनते हैं, तो इस जीवन में मुझे डर नहीं रहेगा। पति का मतलब होता है पालन करने वाला, और इसलिए कृष्ण का एक नाम है जगतपति, जगत का पालन करने वाला है ना। तो जगतपति कृष्ण अगर हम उनको अपना पति बनाते हैं, सच्चा पालन करने वाला, तो फिर हमारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। फिर भगवान पालन करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं थर्ड फोर्थ में पढ़ने वाले, वैदिक श्लोका है माता जी प्रभु जी के बच्चे, इनकी फीस जाएगी इसकी टेंशन इनको होती है कि आपको होती है, है ना। तीन मंथ की फीस जाएगी, रसीद आई है कि नहीं आई है, एग्जामिनेशन तैयारी करानी है। माँ बाप को चिंता होती है जब बच्चा आप पर निर्भर होता है, लेकिन एक बार कॉलेज में चले आप प्रशांत प्रभु बड़े हो गए, तो इनके पेरेंट्स को थोड़ी टेंशन रहेगी, है कि नहीं। जब बच्चा बड़ा होता है और वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो फिर माता पिता छोड़। हम लोग इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होते होते इतने इंडिपेंडेंट हो गए, हम भगवान से भी इंडिपेंडेंट हो गए, कहते ठीक है तुम अपने धाम में, हम अपने काम में, है ना। तो इस तरह इंडिपेंडेंट होने से हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं। हम जैसे ही डिपेंड हो जाएंगे भगवान पे, तुरंत हमारी चिंताएं मुक्त हो जाएंगी, और भगवान भी फिर उस व्यक्ति की ख्याल रखते हैं। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने वरण किया भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का, और फिर भगवान ने कहा आज के दिन हे देवी लक्ष्मी, आपकी जो उपासना करेगा उस व्यक्ति के घर पे मैं जरूर कृपा करूंगा, इसलिए लक्ष्मी पूजन प्रारंभ हुआ। परंतु प्रश्न ये उठता है, ये गणेश जी कहां से आ गए? लक्ष्मी जी तो समझ में आई, समुद्र मंथन से निकली, गणेश जी कहां से आ गए? जिसको देखो बड़ी ही बिक्री होती है इस समय, लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी गणेश लक्ष्मी गणेश, जोड़े जोड़े बना बना करके, है ना, छोटे छोटे चांदी के, पीतल के, मेटल के, ब्यूटीफुल कैसे भी लिख ला के, मिट्टी की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि एक परंपरा बन गई है, बस इसके पीछे ज्ञान क्या है, ओम। लक्ष्मी पूजन शास्त्र में बताया गया, अभी हमने बताया, पर गणेश का पूजन नहीं बताया। गणेश का पूजन इसलिए होता है क्योंकि गणेश जी को बताया गया कि हर पूजन के पहले अगर गणेश का पूजन हो तो उस पूजन में कोई विघ्न नहीं आता है, बस इतना ही उनका काम है। तो गणेश जी का पूजन करना है तो अलग से, लक्ष्मी जी का पूजन अलग से, जोड़े में पूजा नहीं होती है, जोड़े में पति पत्नी की पूजा होती है, और लक्ष्मी के पति कौन है, नारायण विष्णु। इसलिए अगर पूजा करनी है तो गणेश की अलग से कर लो और लक्ष्मी के साथ में नारायण की पूजा करो। लक्ष्मी नारायण कहां से उत्पन्न होते हैं? लक्ष्मी जी आती हैं राधा रानी से और नारायण आते हैं भगवान कृष्ण से, या फिर कह सकते हैं राम से आते हैं नारायण और सीता से आती हैं लक्ष्मी। इसलिए सीता राम की पूजा करो, राधा कृष्ण की पूजा करो या लक्ष्मी नारायण की पूजा करो, परंतु अकेली माता की पूजा नहीं करनी है, लक्ष्मी माता। अभी क्या है, कोई व्यक्ति बोले लक्ष्मी माता मेरे घर आओ, लक्ष्मी माता मेरे घर आओ, लक्ष्मी माता मेरे घर आओ। वो पूछेंगी हस्बैंड को ले आओ, नहीं नहीं माता जी आप ही आओ खाली। प्रभु जी की तो बहुत सेवा करनी पड़ती है, उनका तो भजन गाने पड़ते हैं, नाम जा, आप अच्छी हो, आप जाती हो वहां पे माला माल हो जाती है दोनों पॉकेट, है ना, तो आप ही अकेले आ जाए। तो ना लक्ष्मी जी कहती है मैं आऊंगी ना तो अपने, अभी माता जी जैसे हमारी अगर वो अकेली बुलाओ तो किस पे आती है, अपनी स्कूटी निकालती है फिर आ जाती है, और प्रभु जी को बुलाओ तो अपनी बड़ी गाड़ी में वो हस्बैंड वाइफ दोनों आते, बच्चे भी लेके आते हैं। लेकिन हम लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी बोलते हैं तो लक्ष्मी अपने वाहन पे आती है, उनका पर्सनल वाहन है, क्या नाम है आप सब जानते हैं, और उल्लू बना के चली जाती है। तो ये धन है, हमारा धन का सदुपयोग नहीं, धन तो आता है, लक्ष्मी जी आई प्रसन्न हुई, आपने घर की सफाई करी, चमकाया, लाइट लगाई, दिया लगाया, सो लक्ष्मी जी वेलकम, लक्ष्मी आएंगी, परंतु वो आपको उल्लू वाला वाहन मूर्खतापूर्ण बुद्धि देंगी, जिस बुद्धि से आप उसका क्या करोगे, दुरुपयोग कर दोगे। आपको कहां इस्तेमाल करना है मालूम नहीं पड़ेगा, कभी आपका हॉस्पिटलाइजेशन में चला जाएगा, कभी आप ऐसे केसेस में चला जाएगा, कोई फ्रॉड केस चल गया, खामा खा के लिए केस आ गया, आदमी सोचता रहता है मैंने तो किया ही नहीं, मुझ पे केस कहां से आ गया, और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगते रहते हैं उस आदमी के, रोड एक्सीडेंट हो जाएगा बिना बात के लिए, खर्चा हो जाएगा। तो दुरुपयोग होता है उस धन का अगर हम खाली लक्ष्मी को पुकारते हैं, परंतु अगर हम लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा करें, नारायण को बुलाने से लक्ष्मी कहती हैं अगर मैं अकेली आती हूं तो मैं चंचला हूं, पर अगर मैं नारायण कृष्ण के साथ आती हूं तो मैं स्थिरा हो जाती हूं, क्योंकि जब मैं लक्ष्मी नारायण के साथ आती हूं तो गरुड़ के ऊपर आती हूं, और गरुड़ बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि प्राप्त होती है कि इसका उपयोग करना है। जैसे एक सेठ जी थे, और सेठ जी के पास बहुत धन था, सेठ जी के पास माला माल दराजों के अंदर खूब सोना, हर साल दिवाली पे निकालते, उनका पूजन करते, अगरबत्ती घुमाते बही खातों के अंदर, और फिर दोबारा अंदर ढकेल देते, और इस तरह से सेठ जी खूब पैसे वाले बन गए। एक रात्रि में, नरक चतुर्दशी की रात्रि में सेठ जी के सामने प्रकट हो गई कौन, लक्ष्मी जी। कहती हैं हे सेठ जी, मैं आपसे बड़ी प्रसन्न थी कि आपने मेरी सेवा करी, लेकिन मैं यहाँ घुट रही हूँ, अंदर घुटन हो रही है, कभी मेरा इस्तेमाल ही नहीं किया, हमेशा ला ला, इसीलिए बनी लोगों को बोलते लाला, वो लाला लाला लाला, बस लाला लाला ला करते हैं, दे दे नहीं करते, कभी कुछ दे दे, और ला करके सब कुछ अंदर रखते रहे, और मुझे अभी यहाँ पर घुटन होने लगी है, मुझे क्या करिए प्रभु, बाहर निकालिए। तो लाला जी घबरा गए, सेठ जी ने अपनी बहू को बुलाया जो कि भक्त थी, भगवान कृष्ण का भजन करती थी, उससे बोला लक्ष्मी जी ने मुझे कहा है कि कल दिवाली की रात को वो हमारे घर से चली जाएंगे। तो उनकी बहू रानी ने सुबह सुबह ही उसको उठाया और कहा कि देखिए ससुर जी, अगर आप लक्ष्मी जी को कल तो चली जाएंगी, आज जब तक है इसका सदुपयोग करके कम से कम पुण्य तो प्राप्त कर लो। तो उन्होंने फटाफट, मंदिर बन रहा था, मंदिर निर्माण में अपना सारा पैसा लगा दिया, कुओं में लगा दिया, प्याऊ में लगा दिया, विद्यार्थियों को दे दिया, पुअर को दे दिया, खाने में दे दिया, सब बांट दिया, 30% खाली रोक के 70% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब खाली हो गया, जगह बन गई, तो सांस आने लग गई। तो दीपावली की रात्रि में सेठ जी ने जब प्रार्थना करी तो वहां पर लक्ष्मी जी प्रकट होकर कहती हैं, तेरी बहू तो बहुत बुद्धिमान है, तेरी बहू ने क्या किया, मुझको हवा दे दी, सांस लेने की जगह दे दी, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे पति नारायण का भजन किया, कीर्तन किया, और उसकी सेवा में, भगवान नारायण के मंदिर बनाने में मेरा इस्तेमाल किया, अब मैं तेरे घर से कभी नहीं जाऊंगी। तो वहां पर स्थिरा हो गई लक्ष्मी। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि सच में हमारी लक्ष्मी स्थिरा बने, हमें सदुपयोग कर सके, तो हमको मंदिर निर्माण हो रहा है इस्कॉन द्वारका में, उसमें आप मदद कर सकते हैं, या जहां पर भी आपको ठीक लगता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम आप एक ही जगह पे करें, जहां आपका मन करे वहां लक्ष्मी को सदुपयोग में लगाना चाहिए। और गणेश के साथ पूजन करने से उत्तम है, गणेश जी के गुरु जी का नाम है नरसिंह भगवान। तो अभी हमारे जो पर्चा है इसके अंदर नरसिंह आरती लिखी हुई है, आप दिवाली के दिन नरसिंह भगवान की आरती गाइए, गणेश जी को भी विघ्न हरने की शक्ति प्रदान करते हैं नरसिंह भगवान, तो उस नरसिंह भगवान की आरती गाएं, उससे विघ्न हट जाएंगे, और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उससे लक्ष्मी स्थिरा हो जाएंगी। तो ये होता है वैदिक लक्ष्मी पूजन। उसके अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, क्यों उठाया था भगवान ने, ये दिखाने के लिए कि किसी भी देवी देवता के अंदर मेरे भक्त को परेशान करने की शक्ति नहीं है। इंद्र ने चाहा कि प्रकोप करूं, परंतु क्या किया, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन अपनी कन्नी उंगली पर नाखून के ऊपर उठा करके प्रूफ किया, माय डिवोटी इज नेवर पैरिश, खोनते है प्रतिजाने ही नमे भक्ति आप प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश होता नहीं। जो एक बार भगवान का नाम जप कर लेगा, एक बार गीता पढ़ लेगा, कृष्ण कहते हैं उसकी रक्षा मृत्यु पर्यंत, मरते समय तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतनी शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन वाले दिन हमारे मंदिर में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और चावल से, सूजी के हलवे से, और फिर उस पर्वत की परिक्रमा की जाती है स्मरण करते हुए गोवर्धन के, कि हम गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। गिरिराज गोवर्धन, यमुना और व्रज की रज, वृंदावन की जो मिट्टी है, ये तीन चीजें 5000 साल से आज तक वैसी की वैसी है। गोवर्धन वही है। आज भी अगर आप हमारे साथ वृंदावन जाएंगे, अभी हम जा रहे हैं 17 और 18 तारीख को, वहां पर ऐसे स्थान है जहां पर भगवान ने चरण रखा और भगवान के चरण का स्थान पर निशान पड़ गया, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। भगवान की गाय ने पैर रखा तो गाय के पैर का काय का खुर बन गया, जिसे वहां पर स्थान पे चिन्ह प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन धरोहर को आप देख भी सकते हैं जाकर के, हिस्टोरिकल भी है साथ के साथ में, है ना। तो इस प्रकार भगवान ने ये सारी सारी कृपा करी भक्तों के ऊपर, और इंद्र को भी समझा दिया कि मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसके अगले दिन क्या आता है, सातवें दिन आखिरी दीपावली पर्व है, भाई दूज, भाई फोटा कई नामों से, और उसे यम द्वितीया के नाम से भी बना। कहते हैं उसी दिन यमुना माता का प्रकट होता है, तो जो व्यक्ति यमुना के जल में भाई बहन मिलकर के स्नान करते हैं, यमुना माता क्योंकि कृष्ण की पत्नी है तो कृष्ण की कृपा मिलती है, और साथ में क्योंकि यमराज की पुत्री है तो वो कहते हैं तुमको यम कभी दर्शन नहीं देंगे, यमुना दरस दिखाए, यम तुमको दर्शन नहीं देगा। तो इसलिए यम द्वितीया के दिन भाई बहन को एक दूसरे से मिलना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए भगवान का, पर यमुना मैया का भजन गाना चाहिए, यमुना का स्मरण करना चाहिए, कि हम चलो यमुना तक तो नहीं जा सकते, वैसे दिल्ली में तो यमुना जी हैं, लेकिन कई लोगों को लगता है बहुत गंदा हो गया है पानी, ऐसा है, तब भी यमुना का स्मरण कर सकते हैं। यमुना मैया मेरे घर के जल में प्रवेश करो और उस जल को अपने सिर पर डाले, बोले यमुना स्नान हो गया, शॉर्टकट तो कर सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि कई मंत्र हैं जिन मंत्रों के द्वारा आप दिव्य देवी देवताओं को अपने घर में बुला सकते हैं। जैसे बोलते हैं गंगाए चा यमुनाए चा एवा, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं गंगा यमुना, गंगा यमुना चैवा गोदावरी सिंधु कावेरी जलम आस्मिनिम सनिधिम कुरु। आप क्या करें, 5 पवित्र नदियां 7 पवित्र नदियां मेरे घर के जल में प्रवेश कर जाएं, तुरंत ही जल में नदियां प्रवेश कर जाती है, वो जल गंगा जल यमुना जल में परिवर्तित होता है। उस जल को ले, सिर पे डालें, भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये है शास्त्र के अनुसार जिसे कहते हैं वैदिक, क्या बोलते हैं, वैदिक दीपावली। दीपावली का मतलब है दियों की लड़ियां लगाना। तो दिवाली के दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ दो और उत्सव होते हैं। पहला उत्सव है श्री राम का रावण को वध करके अयोध्या में वापस आना, और दूसरा महान उत्सव है भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा के द्वारा कृष्ण का ओखल से बांधा जाना। तो इस बार वृंदावन यात्रा हम जो जा रहे हैं 17-18 तारीख को, आज भी 5000 साल पुराना ओखल विराजमान है जहां पर यशोदा मैया ने कृष्ण को ओखल से बांधा था। ओखल क्या होता है, जिसमें कुटाई करते हैं धान या मसाले, उसकी पत्थर बड़ी मोटर जो होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, और उसके साथ मैया कृष्ण को बांध रही है, क्योंकि कृष्ण ने दीपावली वाले दिन ही मटकी फोड़ दी और उन्होंने मैया को दुखी किया, तो मैया ने दौड़ करके क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया और कहा आज मैं तुझे सताऊंगी, आज मैं तुझे बांध दूंगी, और वो रस्सी लेके आई बांधने के लिए, तो क्या देखती हैं, रस्सी छोटी पड़ गई, दो उंगली छोटी पड़ रही है, और कहती हैं ओ रे कृष्णा तू बहुत अपने पेट को फुला रहा है, इतना पेट फुला रहा है कि रस्सी छोटी पड़ गई। तो वहां पर गोपियां आती हैं और कहती हैं मैया दुखी क्यों होती हो, हमारी रस्सियां ले लो, तो जिससे बाल बांधते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, चोटी में जो बाल बांधते हैं ना, उसमें एक रस्सी डालते हैं रेशम की, वो आर्टिफिशियल रस्सी निकाल के सबने दी, उससे एक बड़ी रस्सी बनाई। सोचो वृंदावन के सारे लोग आ गए, सबने अपनी अपनी रस्सियां दी, ग्वालों ने अपनी गाय को बांधने वाली रस्सी दी, सारी रस्सियां मिलाकर के भी बांधा गया, फिर भी दो उंगली छोटी, इतना सा बच्चा, इतनी सी मोटर, इतनी सी बड़ी रस्सी, पूरा ब्रजमंडल समाजा उसमें आ नहीं रहा। शक्ति तो भगवान की थी। तो इस प्रकार से भगवान बंधे नहीं, यशोदा मैया ने जब उनसे विनती करी, हे प्रभु बंध जाओ बंध जाओ बंध जाओ, तो भगवान कहते हैं मैया तेरे इस प्रयास से बड़ा प्रसन्न हूं। इसीलिए दो उंगली छोटी हमें शिक्षा देती है, एक उंगली कहती है प्रयास करो, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करो, हो सकता है हम विफल हो जाए सफल हो जाए, प्रयास करो, अगर प्रयास करोगे तो दूसरी उंगली शिक्षा देती है भगवान उस व्यक्ति पर कृपा करते हैं। तो पहली है एफर्ट, दूसरा है मर्सी। एफर्ट मर्सी, एफर्ट मर्सी. आप एक कदम चलोगे कृष्ण 10 कदम चलेंगे, परंतु प्रॉब्लम क्या है, हम एक कदम भी चलते नहीं. इसलिए दामोदर लीला, इसका नाम पड़ गया दामोदर. भगवान के उदर को, पेट को दाम रस्सी से बांधा गया. इस दामोदर लीला का चिंतन मनन दीपावली के दिन किया जाता है. तो हम दीपावली का मतलब है दियों की अवली, लड़ियां लगाना. तो दिए लगाने चाहिए, आर्टिफिशियल तो है ही आजकल, लेकिन अगर आप दिए, हम आपके लिए लेके आए हैं अभी, वैसे तो ये संध्या कार्यक्रम है, परंतु क्योंकि आपकी क्लास सुबह होती है, तो हम एक एक दिया लेंगे और फिर उसको भगवान की ओर 7 बार घुमाना है. 4 बार भगवान के पांव पर, 2 बार भगवान के उधर भाग में और 3 बार भगवान के मुखारविंद, मुंह के ऊपर, और फिर 7 टाइम्स पूरी बॉडी पे घुमाने से भगवान कहते हैं मैं तुम्हें तीनों गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मुक्त कर दूंगा. तो इस प्रकार से अगर आप दिया घुमाएंगे तो आपको कृपा मिलेगी. इसका एक भजन है दामोदर अष्टक के नाम से, 8 लाइनों का एक भजन है, तो हम आपको पर्चा देंगे, उस भजन को आप साथ में दोहराइएगा, हम कीर्तन करेंगे. ठीक है माता जी, पर्चा होगा यहाँ पे दामोदर अष्टक का.